نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب کتاب میں سے ہم اگلی نشست کا آغاز کرتے ہیں. پیج نمبر 88 ہے اور اس میں سے پانچواں پوائنٹ ہم دیکھیں گے. اس وقت جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے انسان استاد سے زیادہ فائدہ لے سکتا ہے. اور اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ کیسے ایک اچھا یعنی شاگرد کیسے بن سکتا ہے. تو ابھی یہ بات ہے کہ استاد کے خلاف طبع فعل پر صبر کرنا پانچواں پوائنٹ ہے اس چیپٹر کا. پورے پچھلے دہرا دیتی ہوں تاکہ شاید آپ کو فائدہ ہو جائے. یعنی ٹاپک کا نام ہے استاد کے ادب اور عظمت اور احترام کے بیان میں. اس میں 13 باتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی جو ہم پڑھ چکے علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور تقویٰ کو منتخب کرنا. دوسرا پوائنٹ ہے استاذ کی فرما برداری اور توازو. تیسرا پوائنٹ ہے شیخ کی تعظیم کرنا اور ان کے شایان شان صفات بیان کرنا. چوتھا پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ استاد کے فضل کو فراموش نہ کرنا. اور آج انشاء اللہ تعالی ہم پانچواں پوائنٹ دیکھیں گے استاد کے خلاف طبع فعل پر صبر کرنا. مشکل اردو ہے اس کتاب کی کیونکہ پرانے دور کی لکھی ہوئی ہے، تو میں اس کو ہلکا سا سمپلیفائی کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ استاد کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل، کوئی کام جو انسان کی طبیعت پہ بوجھل ہو اس پر صبر کرنا چاہیے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ ساتھ ڈسکشن کریں گے. اگر استاد سے کوئی زیادتی سرزد ہو جائے یا اس کی ترش روی اور سوئے خلق اس کے حسن عقیدت اور اس کی صحبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، استاد کی ان حرکات کی تاویل کرے اور استاد کی زیادتی یا ظلم کے وقت عذر خواہی کرے، توبہ استغفار کرے اور استاد کے عتاب کو برداشت کرے، یہ استاد کی محبت کو برقرار رکھنے کا سبب ہے، طالب علم کی دنیا اور آخرت کے لیے نافع ہونے کا ذریعہ ہے. کسی بزرگ کا قول ہے جو تعلیم کے لیے ذلت برداشت نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی جہالت کی اندھیریوں ہی میں رہے گا، اور جو اس کو برداشت کرے گا دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا. ایک شعر بھی انہوں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر تو اپنے طبیب سے بدعنوانی کرے گا، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، تو ہمیشہ بیمار ہی رہے گا، اور اگر شاگرد نے معلم سے بدتمیزی کی تو وہ ہمیشہ جاہل ہی رہے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، طالب علم بن کر ذلت برداشت کرو گے تو مطلوب بن کر عزت پاؤ گے، یعنی تم ایسے بن جاؤ گے کہ پھر لوگ تمہیں طلب کریں گے. انہی کا قول ہے ایک شعر میں، اگر استاد اور ڈاکٹر کی تکریم اور تعظیم نہ کی جائے تو وہ خیر خواہی نہیں کرتے. معافی بن عمران فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی نے فرمایا، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا، لوگ تیرے پاس دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں اور آپ ان پر غصہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے پاس نہیں آیا کریں گے. تو کہنے والے سے فرمایا، اگر وہ میرے سوئے خلق کی وجہ سے اپنے نفع اور نقصان کو چھوڑیں تو وہ تیری طرح احمق ہوں گے. استغفر اللہ. حضرت امام یوسف رحمہ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے فرمایا، پانچ چیزوں کی مدارت انسان پر واجب ہے. مدارت جیسے خاطر مدارت کرتے ہیں نا مہمان کی، ابھی انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں گی. پانچ چیزوں کی مدارت انسان پر واجب ہے اور ان میں سے ایک وہ عالم بھی ہے جن سے علمی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ تھا پوائنٹ نمبر 5. کافی باتیں تو واضح ہو گئی ہوں گی الحمدللہ. पहली बात, अगर जुमलों की सूरत में हम इसको लिखें जैसा कि हम हर दफ़ा करते हैं, आप अपनी इस बुक के ऊपर ही किसी हल्के से कलर के साथ या पेंसिल से 1, 2, 3 कर सकते हैं, क्योंकि हर जुमला असल में एक गाइडलाइन होता है हमारे लिए। एक पहली बात है कि अगर उस्ताद से कोई ज़्यादती सरजद हो जाए, सरजद होना मीन हो जाए, अगर उस्ताद कोई ज़्यादती कर दे या उसकी तुर्श रवि, तुर्श ची कहते हैं खट्टे को, खटास, और रवि यानी बात करना, यानी ऐसी बात जो स्टूडेंट को अच्छी ना लगे, किसी वक्त उसने उससे थोड़े ऐसी टोन में बात कर दी कि स्टूडेंट को वो बात अच्छी ना लगी, और सुए खुल्क होता है बुरा अखलाक, इसके हुस्ने अकीदत और उसकी सोहबत की राह में रुकावट ना बने, यानी इवन अगर उस्ताद शागिर्द के साथ बुरे अखलाक से भी पेश आए तो ये बात स्टूडेंट को इस बात पे मजबूर ना करे कि वो अपने उस्ताद के साथ हुस्ने अकीदत ना रखे, यानी अकीदत जो थी उसको ख़त्म कर दिए, और उसकी सोहबत की राह में रुकावट ना बन जाए, यानी कि उसकी सोहबत छोड़ दे। इसे क्या पता चलता है कि क्या, मतलब ज़ाहर जुमले से ऐसे लगता है कि क्या उस्ताद ज़्यादती कर सकते हैं। देखिए, उस्ताद ज़्यादती करे या सरजद हो, दोनों बातें आप सामने रखिएगा। इवन अगर उस्ताद ज़्यादती भी कर दे, और मेरा पूरा गुमान है कि उस्ताद माँ बाप की तरह कभी बच्चों के साथ ज़्यादती करते नहीं हैं, हाँ बच्चों की तरह स्टूडेंट्स को भी ये लगता ज़रूर है कि हमारे साथ ज़्यादती की जाती है, और इसका अगर अमली तजुर्बा करना हो ना तो अपने बच्चों से आज जाके पूछ लीजिएगा, जिनके बच्चे हैं, कि बेटा मैं कैसी मम्मी हूँ। हर एक इसी गम में होगा जो अंदर से कमज़ोर है कि आप दूसरे बच्चे को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, सच है कि झूठ। और ये औरतों में भी रहता है, अगर एक मर्द की दो बीवियाँ हो ना तो हर बीवी को ये गम ज़रूर रहेगा कि मेरा शौहर दूसरी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करता है, सच है ना। क्या आपके दिल में आता है कभी, सोचें ज़रा, आपकी अम्मी आपकी बहन से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं मेरे से नहीं। तो लिहाजा ये बात जो है, अगर कोई है तो ये सारी बातें एक जगह है, ये है कि नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन ये देखो कि मुझे क्या करना है, हाँ हुस्ने अकीदत और सोहबत की राह में रुकावट ना बने, नुकसान क्या होगा, अपना नुकसान होगा ना। फिर अगली बात देखिए कि उस्ताद की इन हरकात की तावील करें, ये क्या जुमला है, इसका मतलब ये कि अगर अपेरेंटली आपको कोई ऐसी बात लगती है कि मेरा उस्ताद मेरे से ज़्यादा दूसरे से मोहब्बत करता है, या मेरी डिसग्रेस करता है, या बदअखलाकी करता है, या मारता है, उस्ताद मारते भी थे पहले दौर में, आज तो हर तसव्वुर ही मुमकिन नहीं इसका कि कोई मारे, और माशाल्लाह स्टूडेंट मार खाने वाले भी नहीं हैं क्योंकि महज़्ज़ब हो गए, और बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उनको ऐसे एटिकेट्स दे दिए। पहले दौर में लोग शुरू से दीन की तालीम पे आ जाते थे, दुनिया की तालीम नहीं हासिल किए होते थे, इसलिए उनको मार ज़्यादा पड़ती थी क्योंकि उनको अभी वो मैनर्स नहीं आए होते थे। लेकिन आज के दौर में मैं फील करती हूँ इस चीज़ को कि जितने लोग दीन सीखने आते हैं ना, वो पहले से तहजीब सीख चुके होते हैं किसी हद तक, कुछ चीज़ें कुरान के साथ भी आती हैं। तो अगर उस्ताद की कोई हरकत देखे तो तावील करे, तावील क्या है कि उसकी कोई वजह ढूंढे, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये सिर्फ उस्ताद के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। किसी का मैंने आपको कुलिया लिखाया था, या तो इमाम इब्ने कय्यम का है और या इमाम इब्ने तैमिया का, कहते हैं कि तुम किसी की कोई चीज़ देखो, कोई उसकी ख़राब चीज़ देखो तो तुम उसके उज़र लिखो, नहीं ये वजह होगी, फिर ये वजह होगी, अच्छा नहीं शायद ये नहीं होगी, अच्छा ये होगी, लिखो कॉपी में 99 उजर्स लिखो, उजर मीन उसकी रीजंस का रीजनिंग करना जिसको कहते हैं, और आखिर में फिर एक 100 नंबर पे क्या करो एक्सक्यूज़ कि ये वो वजह है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही। सुभानअल्लाह कि मैं इतनी बातें करने के बावजूद मैं असल चीज़ पे नहीं पहुँच सका, तो लिहाजा उसको छोड़ दो, उस बात को छोड़ दो कि यकीनन इसके पीछे हैर होगी, ठीक है। और फिर जुल्म के वक्त उज़र ख्वाही करे, यानी अगर उस्ताद मार देता है तो फिर उज़र तराही करे कि नहीं इस मार में कोई वजह होगी, मैंने सबक सही नहीं पढ़ा होगा, और दिस एंड दैट, इस तरह की बातें करे, और साथ ही साथ तौबा इस्तग़फ़ार करे, और उस्ताद के अताब को बर्दाश्त करे। अताब कहते हैं डांट को, गुस्सा करना, जैसे गरजना बरसना, अगर वो कोई ऐसी बात करता है, इससे फ़ायदा क्या होगा, उस्ताद की मोहब्बत बरकरार रहेगी। क्या उस्ताद से मोहब्बत करना भी कोई नेमत है जी, हम तो खुद मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत करता हूँ, तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उसकी मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है। वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, और उन अमलों की मोहब्बत मांगता हूँ जो तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दें। तो अगर उस्ताद के लिए हमारे दिल से मोहब्बत उठती है ना, ये अल्लाह का एक अज़ाब है। ये वही बच्चों की तरह, जिन बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत नहीं रहती ना, तो क्या वो बच्चे बहुत खुश है? दोस्तों से मिल जाती है वो मोहब्बत जो माँ से मिलनी थी, बाहर के लोगों से मिल जाती है? नहीं मिल सकती ना, बिल्कुल। फिर आगे फरमाया कि तालिब इल्म की दुनिया और आखरत के नफ़े होने का ज़रिया है, यानी उस्ताद से मोहब्बत का फ़ायदा, नफ़ा दुनिया और आखरत में होता है। फिर ये बात भी, इसको भी एक जुमले में लिखें कि किसी बुज़ुर्ग का जो कॉल था कि तालीम के लिए ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सारी ज़िंदगी जहालत के अंधेरों में रहेगा। ये क्या होती है, आप क्या समझे? लफ्ज़ ज़िल्लत से ज़रा जहन में एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। देखिए कि ज़लूल लफ्ज़ कहते हैं नरम, ज़ा लाम लाम, ज़िल्लत का रूट ज़ा लाम ता नहीं है, ज़ा लाम लाम। ज़िल्लत क्या होती है कि बंदा अपने आप को इतना नरम कर ले, इतना झुक जाए, जिसको आप कह लें ना कि ओवर प्रेशर भी हो जाए तो अपने आप को उसको बर्दाश्त करे। पढ़ने के लिए बैठे में थक रहे हैं, कमर टूट रही है, बैठना है, हाथ थक रहे हैं, बार बार पसीने आ रहे हैं, कलम छूटता है, फिर उंगलियों को थोड़ा चटखाते हैं, फिर कलम पकड़ते हैं, पकड़ो, इतनी देर फोकस नहीं हो पा रहा, जहन भटक रहा है, फिर ये है ज़ुलूल, ये ज़ुलूल है कि आप उस्ताद के साथ कई घंटे तक अगर वहाँ बैठे हो और अगर वो नहीं अपनी जगह से उठा तो आप ना उठो, बिला वजह वहाँ से उठो ना। यानी आप समझ रहे हैं ना, किसी काम को करने के लिए जिसको आप कह सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को मारना, उर्दू में हमारे यहाँ कहते हैं अपने नफ्स को मारना, तो नफ्स को कुचलना, ये मतलब है यहाँ ज़िल्लत का। वरना खुदा ना हस्ते से ये मतलब नहीं है कि ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन के मानों में यहाँ ये नहीं है। वरना नुकसान क्या होगा, सारी ज़िंदगी जहालत के अंधेरों में रहेगा। वो कैसे? देखिए कि जिसका एक रवैया है ना, अगर वो अपने रवैये को नहीं बदलेगा तो वो फ्यूचर में भी ऐसे ही सोचेगा, वो ऐसे ही करेगा। जब तक वो अपना रवैया नहीं बदलेगा उसको कभी भी खैर नहीं मिलेगी। हाँ, जो बर्दाश्त कर लेगा वो दुनिया और आखरत में इज़्ज़त पाएगा। फिर अगली दो मिसालों में आपने देखा कि उस्ताद और तबीब का तकाबुल किया गया, टीचर और डॉक्टर दोनों एक ही जैसे होते हैं ना। डॉक्टर के हाथ में आप अपनी नब्ज़ दे देते हैं, आप नब्ज़ देते हैं कि वो आपके साथ जो मर्ज़ी करे, आपको इंजेक्शन लगाए, आपके गले में, आप ज़रा सोचिए, ज़रा एक लम्हे के लिए, मुझे सोच के भी मज़ा आ रहा है कि डॉक्टर आपके साथ क्या कुछ करता है। मुंह खोलो, ज़ुबान निकालो, हैं, फिर एक रुई के ऊपर, वो स्टिक के ऊपर रुई लगा के आपके अंदर से टॉन्सल्स चेक करता है, हैं, कभी उसको ज़रूरत महसूस होती है तो वो एक इंजेक्शन भर के ले आता और कहता है चलो बैठो इधर लेटो, इंजेक्शन लगवाओ। फिर इस पर भी उसको लगता है कि नहीं, इलाज नहीं हुआ तो वो आपका पेट भी काटेगा। कोई हिलता है कि ये क्या आप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, सीधी तरह काम करें, दवा दे और मैं घर जाऊं। वो कैसे दवा दे दे जब उसने आपको छान फटक के देखा ही नहीं? बिल्कुल यही रवैया अगर आप देखें तो तबीब का मामला जिस्म के साथ है और उस्ताद का मामला रूह के साथ है। अगर एक उस्ताद और शागिर्द का कम्युनिकेशन ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी बीमारियां दूर करेगा? आप बात नहीं कर पा रहे, ये जो आपको बार बार कहा जाता है ना, माइक पे आएं, शेयरिंग करें, क्या सीखा, क्या पढ़ा, ये असल में ये वो डायग्नोस करने के मरहले होते हैं। वरना जिस तरह आज मैं और आप और हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें तो कितने पर्दे हायल हैं ना, हम एक दूसरे की शक्ल जानते ना, हम जानते कि कौन किस माहौल में बैठा हुआ है, क्या माशरा है। अगर आप अपनी ये बातें आके बताते ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कल के सबक में मैंने तैयारी क्या करनी है, क्या कमी है? आप देखिए, जब आप लोग माइक पे आते हैं ना, मैं आपकी टोन चेक करती हूँ। आज आपको ये भी बता दूँ कि आपका क्या क्या नोट होता है। आप तो उस वक्त बड़े जज्बाती होकर बैठे होते हैं ना, सुन अपनी एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। सबसे पहले आके देखा जाता है कि आप आते कैसे माइक लेने में, फिर उसके बाद आप देखिए कि आप किस सलाम करने के अंदाज़ को मैं नोट करती हूँ, मैं करती हूँ, बाकी टीचर्स भी आपके करते होंगे जिनके साथ आप शेयरिंग करते हैं। फिर उसके बाद आपके बात शुरू करने का स्टाइल, टोन, फिर जो नुक्ता आप उठाते हैं ना, मैं उसको देख के सोच रही होती हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात छोड़ के ये किसी चीज़ पे चले गए। और बाज़ दफ़ा कोई इतना अच्छा नुक्ता बताता है कि मेरे लिए उससे एक नई सोच खुल जाती है और मुझे दिल से खुशी होती है कि वाकई इन्होंने सही तरह से बात सुनी। अच्छा, कुछ लोग एक जुमला बार बार सब की तरह जो कोई एक बोलता है वो जुमला सारे ही बोलते हैं, हाँ वो जुमले मुझे ऐसे लगता है जैसे वक्त ज़ाया हुआ। तो जब तक एक उस्ताद और शागिर्द का कम्युनिकेशन नहीं होगा आप नहीं सीख सकेंगे। और मैंने ये एक्सपीरियंस भी देखे लोगों के, मैंने लोगों से जुमले भी सुने कि सबसे बिग बैरियर जो इल्म के रास्ते में होता है वो डायरेक्ट उस्ताद और शागिर्द का कम्युनिकेशन होता है। अभी पिछले दिनों मुझे इधर ही किसी ने बताया, उन्हीं की गवाही दे रही जो मुझे, उन्होंने कहा कि तजवीद की क्लास उन्होंने शुरू की है कहीं और पहले पढ़े हुए हैं, बहुत जगह पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके उस्ताद ने उनको ये कहा कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आप बैठ के सामने और आमने जब तक उस्ताद को आप सुनाएंगे नहीं वो आपकी गलतियां नहीं निकालेगा, आपको तजवीद नहीं आएगी। और यही हाल दूसरी चीज़ों का है। तो बहरहाल उस्ताद और तबीब का मामला करीब करीब मिलता जुलता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो आखिरी बात थी इसको देख लेते हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वाली कि सुफियान बिन उयैना ने कहा कि लोग आपके पास दुनिया के कोने कोने से आते हैं और आप उन पर गुस्सा करते हैं। अब आप इसे एकदम सोच रहे होंगे अच्छा इमाम शाफ़ी तो फिर बड़े गुस्से वाले थे। देखिए उस्ताद का गुस्सा जो होता है ना वो डिसिप्लिन होता है। आम लोगों के गुस्से और इल्म वाले के गुस्से में बहुत फ़र्क होता है। आम लोग गुस्से में काम छोड़ देते हैं, वो गुस्सा करके काम की क्वालिटी कम करा देते हैं। उस्ताद का गुस्सा जो है वो उस काम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। मसलन अगर लोग बातें कर रहे हैं तो क्या उस्ताद को खुशी होनी चाहिए? वो गुस्सा नहीं कर सकता। बीच में लोगों के सेल फोन बज रहे हैं और वो भी नए लोग नहीं, पुराने लोग हैं जो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स और गेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, ये फ़र्क रखना चाहिए। बाज़ उस्ताद नहीं रख पाते, कोई पहले दूसरे दिन आया और बीच में सेल बजा तो वो कहते हैं प्लीज़ आप बाहर चले जाएँ, किसी के साथ बच्चा आया कहा आप इधर से उठ जाएँ, ये नहीं करना चाहिए, ये बुरा अखलाक होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो इंसान एक ऐसा मामला महसूस करता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर आप देखिए कि उस्ताद के साथ चलना फिरना, यानी इस चीज़ को इतना मायूब समझा जाता था पहले दौर में कि उस्ताद के आगे ना चला जाए, और इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए, ये अदब के ख़िलाफ़ है। उस्ताद कहाँ बैठा है, आप कहाँ बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, बराबर बैठना ही मुश्किल लगता है। ये जब दिल के अंदर आपके सच्चे जज्बात होते हैं ना उसका इजहार आपकी ज़ुबान पे आता है। तो लिहाजा अगर वो गुस्सा करें तो उनको डरा रहे हैं कि देखो आपके इस गुस्से से लोग चले जाएंगे, इमाम शाफ़ी को। तो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या है कि देखो अगर वो चले जाएंगे तो वो तुम्हारी तरह अहमक है, क्योंकि पहले दौर के उस्तादों के जो पढ़ाने के अंदाज थे, और आपको पता है कि इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके शागिर्द कोई 100 200 1 2 4 10 नहीं होते थे, हज़ारों के मजमे होते थे। कभी किसी मौके पे आप इंशाल्लाह इसको भी मज़ीद सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो कैसा दौर था और लोग किस तरीके से इल्म के साथ ताल्लुक़ जोड़ते थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर कोई यानी ऐसा करेगा तो फिर ये उसकी हिमाकत होगी। और ये जो आखिरी बात इमाम अबू यूसुफ़ की, पहली बात जो थी वो आखिरी से पहली थी और अब आखिरी बात इमाम यूसुफ़ अबू यूसुफ़, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। इनका ये कहना कि पांच चीज़ों की मदारत, मदारत क्या होती है, खातर मदारत। और अगर इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में आपने समझना है तो फिर वो ये होगा कि बच्चे की जो आप मिनते नहीं सुबह कर रहे होते, अभी करके ही बैठे होंगे कुछ लोग, थे क्या खाओगे, अच्छा ये बना दो, अच्छा सीरियल भी नहीं खाओगे, अच्छा मैं ये बना दूँ, अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा तू बता क्या बनाओ, इसको मदारत कहते हैं। यानी बिगड़े हुए बच्चे के जो लाड देखने या उसकी नाज बरदारियाँ जो होती हैं ना वो करना। तो यहाँ मदारत किसकी है कि इल्म वाले की मदारत करो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब के इस सीखने को हमारे लिए एक बेहतरीन सदका जारिया बना ले, और हम जो बात भी कहें और सुने उसको हमारे अमल में आसान कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।